नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं, देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फसल विविधीकरण पर बल दिया। भिवानी जिले के गोकुलपुर में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने हिसार में आयोजित कृषि मेले में 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय AI स्किलिंग पहल, माई वेव्स इनबिल्ट TV ट्यूनर एवं एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। श्री मोदी आज लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दे रहे थे। इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस समय पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं।
भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो।
श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी LPG जरूरत का 60% आयात करता है। अनिश्चितताओं के कारण सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए LPG की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया है।
बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मेट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मेट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए दुनिया इस संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस गंभीर स्थिति में देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। संघर्ष की शुरुआत से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से देश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1,000 भारतीय ईरान से सुरक्षित वापस आए हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश भर में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए PM ई बस सेवा पहल शुरू की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत राज्यों को पिछले महीने 225 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति की जा चुकी है।
इसकी पहली खेप 225 बसों की अभी पिछले महीने ही डिलीवर कर दी गई है और बहुत जल्दी आने वाले महीनों में 6,500 बसों के एग्रीमेंट भी स्टेट्स ने कर लिए हैं। तो जैसे जैसे एग्रीमेंट होते जाएंगे कंपनीज डिलीवर करती जाएंगी और इस 10,000 की जो पहली खेप है ये 2027 के अंत तक ये कम्प्लीट होगी। एक समयबद्ध तरीके से कैसे लोगों का समय बचे, कैसे पर्यावरण उसमें मजबूत हो, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड उन बसों में भी चलेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 58,000 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए का सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनका बलिदान देशवासियों की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। संसद के दोनों सदनों में भी आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मेले में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा,
क्योंकि आज 23 मार्च है, हमारे लिए ये विशेष दिन भी है। आज उन हमारे जो आजादी के मतवाले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है, जिन महापुरुषों के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो मेले के अवसर पर ऐसे महापुरुष, ऐसी क्रांतिकारी वीरों को नमन है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि आज हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सतत कृषि समृद्धि की राह थीम पर आयोजित 2 दिवसीय खरीफ कृषि मेले का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बतौर विशिष्ट अतिथि मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस बजट में सेमग्रस्त कृषि भूमि को सेम मुक्त करने सहित कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र के सामने नई चुनौतियां भी हैं, उनसे निपटने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती को भी बढ़ाना होगा, फसल विविधीकरण को अपनाना होगा। गेहूं और धान के फसल चक्र से बाहर निकलकर हमें दलहन फसलों की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि आज ही भिवानी जिले के गोकुलपुर में 64 एकड़ क्षेत्र में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटे अनाज के अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है।
साथियों, यह केंद्र हमारे मोटे अनाजों की उन्नत और रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास और मिलेट आटे की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ उत्पादकों के बीच मजबूत बाजार संपर्क स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मेले में मिलने वाली जानकारी का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कृषि उद्योग क्षेत्र से जुड़ने का आह्वान भी किया।
मैं विशेष रूप से अपने युवा किसान साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृषि में अब ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। एग्री स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अगर युवा इस दिशा में आगे बढ़े तो खुद रोजगार पा सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी आप रोजगार देने का काम कर सकते हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि से संबंधित विभिन्न पुस्तकों का विमोचन भी किया और हरियाणा की 21 महिला किसानों सहित 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए सरकार के प्रयासों ने देश में टेलीविजन देखने के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय AI स्किलिंग पहल, माई वेव्स इन बिल्ड टीवी ट्यूनर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो कभी एक बड़ा सेट टॉप बॉक्स हुआ करता था, वो अब आधुनिक टेलीविजन सेट में इन बिल्ड टीवी कार्ड के माध्यम से एकीकृत हो गया है। ये कदम टेलीविजन निर्माताओं, प्रसार भारती और दूरदर्शन के बीच फ्री डिश पहल के तहत सहयोग से संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और घरेलू तथा परिवहन कार्यों के लिए प्राकृतिक गैस की 100% आपूर्ति की जा रही है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की हाल की घटनाओं के बारे में अंतर मंत्रालय पत्रकार वार्ता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 50% वाणिज्यिक LPG राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्यों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्तरां, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को इस आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। कालाबाजारी और जमाखोरी के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 37,000 छापे मारे जा चुके हैं, 550 FIR दर्ज की जा चुकी है और 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने पूरे देश में औचक निरीक्षण भी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं, देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फसल विविधीकरण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने हिसार में आयोजित कृषि मेले में 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।